आप आ गए, उसने राहत भरी आवाज में कहा। मैं भी आपके लिए खाना लगाती हूँ।
रहने दो, आर्य ने थके हुए लहजे में कहा। तुमने कहा था ना कि फुल टाइम मेड रखेंगे, वो कहाँ है?
मैंने ही उसे उसके क्वार्टर्स में जाकर आराम करने को कह दिया, सानवी ने जवाब दिया। आप देर से आने वाले थे इसीलिए सोचा परेशान ना हो। इतना कहकर सानवी किचन की तरफ बढ़ गई। किचन के अंदर रखी छोटी सी डाइनिंग टेबल पर वो जल्दी जल्दी खाना लगाने लगी। प्लेट, कटोरी और चम्मच की हल्की आवाजें उस खामोशी को और गहरा कर रही थीं। आर्यन भी पीछे पीछे आया और कुर्सी खींचकर बैठ गया। उसकी थकान उसके चेहरे से साफ झलक रही थी, लेकिन उसके माथे की लकीरों में कुछ और भी था, जैसे कोई बात दिल में अटकी हो। सानवी ने उसकी तरफ देखा तो ठिठक गई। क्या हुआ, उसने धीरे से पूछा। आप कुछ कहना चाहते हैं? आपके चेहरे से लग रहा है कि कोई बात है। आर्यन ने एक पल के लिए नजरें झुका ली, फिर गहरी सांस लेकर उसकी तरफ देखा। सानवी, उसने कहना चाहा लेकिन शब्द जैसे गले में अटक गए। सानवी ने खाना परोसते हुए फिर पूछा, आर्यन प्लीज बताइए, अगर कुछ परेशान कर रहा है तो मुझसे छुपाइए मत। आर्यन ने प्लेट की तरफ देखा, फिर सानवी की आंखों में। क्या फायदा तुमसे बात करने का? आर्यन की आवाज में थकान और गुस्सा दोनों साफ झलक रहे थे। तुम कौन सा मेरी बात मानती हो? सानवी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल भी था और दर्द भी। अच्छा, तो आप फिर वही बात कर रहे हैं? उसने धीमे मगर ठोस स्वर में कहा। कि मैं और जय कुछ दिनों के लिए यहाँ से चले जाएं? क्या हुआ है आपको आर्यन? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आर्यन ने प्लेट में रखे खाने की तरफ देखा, दो चार चम्मच जबरदस्ती मुंह में डाले, फिर प्लेट वहीं छोड़ दी। वो कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और एक लंबी ठंडी सांस ली, ऐसी सांस जिसमें पूरी जिंदगी की थकान समाई हुई थी। मेरी जिंदगी में तुम्हारे और जय के सिवा है ही कौन सानवी? उसकी आवाज अचानक भारी हो गई। मैं अपनी बहन को खो चुका हूँ हमेशा के लिए। मेरी माँ अस्पताल में है, उनका इलाज अभी भी चल रहा है। वो मानसिक तौर पर ठीक नहीं है, हर दिन मुझे डर लगता है कि कहीं कुछ और ना हो जाए। सानवी कुछ कह नहीं पाई, वो बस उसे देखती रही। मैं तुम दोनों को रिस्क पर कैसे डाल सकता हूँ? आर्यन की आंखों में गुस्सा नहीं, बेबसी थी। विक्रांत ने ही मेरी बहन और मेरे बहनोई का कत्ल करवाया था, ये कहते समय उसका गला भर आया, मगर उसने खुद को संभाल लिया। वो आगे कुछ कहना चाहता था, बहुत कुछ। तुम सारा दिन बाहर रहती हो, उसने कड़वे स्वर में कहा। कोई सिक्योरिटी नहीं रखती, मुझे समझ नहीं आता कि मैं उसे कैसे रोकूं, कैसे पकड़ूं, हर पल डर लगा रहता है। सानवी ने उसकी तरफ ध्यान से देखा, इस बार उसकी आंखों में नाराजगी नहीं, समझदारी थी। आपके पास उसके खिलाफ सबूत हैं? उसने शांत स्वर में पूछा। अगर हैं तो आपको पुलिस के पास जाना चाहिए। मैं नहीं जा सकता, आर्यन ने साफ साफ कहा, जब तक तुम मेरी बात नहीं मानोगी। इतना कहकर वो किचन से बाहर निकल गया। उसके कदम तेज थे, जैसे वो वहां एक पल भी और नहीं रुक सकता। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसके अंदर का तूफान और भी उग्र हो गया। सानवी एक पल वहीं खड़ी रही, फिर उसने बिना कुछ कहे उसके पीछे पीछे चलना ठीक समझा। वो भी कमरे में चली गई, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ बहस नहीं थी, ये डर, प्यार और अपनों को बचाने की जिद के बीच की जंग थी। आर्यन बिना कुछ कहे कपड़े बदलने के लिए बाथरूम में चला गया। उसके जाने के बाद कमरे में अजीब सी खामोशी छा गई। सानवी बेड पर बैठी रही, उसकी नजर बार बार बाथरूम के दरवाजे पर टिक जाती। वो जानती थी आज आर्यन के दिल में बहुत कुछ उथल पुथल मचा हुआ है। कुछ देर बाद आर्यन बाहर आया, बदले हुए कपड़ों के बावजूद उसके चेहरे की बेचैनी छुपी नहीं थी। सानवी ने उसे देखते ही कहा, आप मुझे पूरी बात बताइए, आखिर हो क्या रहा है? आर्यन ने पल भर उसे देखा, फिर गहरी सांस ली। इंद्र को शक है, उसने धीरे से कहा, कि जेसिका को आर्य विक्रांत ने कहीं घर में बंद करके रखा है और उसी ने अनन्या और जगत का एक्सीडेंट करवाया था। सानवी सन रह गई। मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहता हूँ, आर्यन ने आगे कहा, लेकिन उससे पहले चाहता हूँ कि तुम और जय यहाँ से कहीं चले जाओ, मैं तुम लोगों को यहाँ नहीं रखना चाहता। उसके शब्द कठोर थे, मगर पीछे छुपा डर सानवी साफ महसूस कर सकती थी। सानवी ने संयम से कहा, हाँ सही बात है, जय की सिक्योरिटी के लिए तो उसे यहाँ से भेजना ही पड़ेगा, और मेरे बिना तो वो जाएगा नहीं। पर सानवी के ये कहते ही आर्यन का गुस्सा उभर आया। तो तुम्हें क्या लगता है, वो तेज स्वर में बोला, कि मुझे सिर्फ जय की ही फिक्र है? वो उसकी तरफ बढ़ा, मुझे तुम्हारी भी फिक्र है सानवी, समझने की कोशिश करो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सानवी जैसे वहीं जम गई, उसकी आंखें अपने आप आर्यन के चेहरे पर टिक गईं। ये क्या कह रहा है? उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आप मुझसे प्यार, उसकी आवाज कांप गई, आप मुझसे प्यार कैसे कर सकते हैं? आप तो मुझ पर गुस्सा है, कृति की वजह से इतना कुछ हुआ, और उसकी जिम्मेदार मैं भी थी, क्योंकि मैं सब जानते हुए भी चुप रही। उसकी आंखें भर आईं। आर्यन पलटकर खिड़की के पास चला गया। बाहर अंधेरा घिर आया था, ठीक वैसा ही अंधेरा जैसा उसके दिल के भीतर था। जब कोई किसी से प्यार करता है ना, उसने बाहर देखते हुए कहा, तो उसकी गलतियां दिखाई ही नहीं देती। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर झुकाया। मैं खुद को समझाता रहता हूँ कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मगर सच ये है कि मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। वो पलटा और जैसे ही उसने पीछे देखा, सानवी ठीक उसके सामने खड़ी थी। आर्यन एक पल रुका, फिर उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ में सख्ती नहीं, सिर्फ अपनापन था। तुम्हारे दिल में भी तो मेरे लिए कुछ था, उसने बेहद नरमी से कहा,
मत कहना कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कभी कुछ भी नहीं था। सानवी की पलकों पर ठहरे आंसू छलक पड़े। उसने नजरें झुका ली। उसकी खामोशी ही उसका जवाब थी। आर्यन ने उसका हाथ और कसकर थाम लिया, क्योंकि उस झुकी हुई नजर में उसे अपना सारा सच मिल गया था। सानवी की झुकी हुई नजरों ने ही आर्यन के सवाल का जवाब दे दिया था। कमरे में खामोशी थी, मगर उस खामोशी में धड़कनों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। आर्यन ने धीरे से उसका हाथ थामे रखा। मैं जानता हूँ, उसने बहुत नरमी से कहा। मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया है, गुस्सा, शक, डर सब तुम पर निकाल दिया, मगर सच ये है सानवी, मेरी हर सोच तुम्हारे इर्द गिर्द ही घूमती है। सानवी ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में नमी थी, मगर साथ ही एक अपनापन भी। आप जब मुझ पर गुस्सा होते हैं ना, उसने भर्राई आवाज में कहा, तब भी मुझे लगता है कि आप मुझे खोने से डरते हैं। आर्यन ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसका हाथ अपने सीने पर रख दिया। क्योंकि यहाँ सिर्फ तुम हो, उसकी आवाज सच्ची थी, बिना किसी बनावट के। सानवी का दिल जैसे उसी पल पिघल गया। मैंने भी बहुत कुछ छुपाया, वो बोली, डर के मारे, रिश्तों के डर से, मगर आज अगर आप मुझसे पूछें तो मैं झूठ में ही बोल पाऊंगी। आर्यन ने उसकी आंखों में देखा। तो बोलो, उसने फुसफुसा कर कहा। सानवी ने हल्की सी सांस ली। मुझे फर्क पड़ता है आपसे, आपके होने से, आपके छूने से, आपकी फिक्र से, बस इतना सुनना था। आर्यन ने उसे धीरे से अपनी बाहों में खींच लिया। वो कोई जोरदार आलिंगन नहीं था, बल्कि ऐसा जैसे बरसों का थका हुआ इंसान सुकून पा गया हो। सानवी ने भी बिना झिझक अपना सिर उसकी छाती पर टिका दिया। उस पल न कोई डर था, न विक्रांत, न दुनिया, सिर्फ दो दिल जो आखिरकार एक दूसरे की सच्चाई मान चुके थे। आर्यन ने उसकी पेशानी पर हल्का सा चुंबन दिया। आज तक हम साथ होते हुए भी दूर थे, उसने कहा, आज मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। सानवी ने उसकी शर्ट को हल्के से पकड़ लिया। तो फिर दूर मत जाइए, वो बस इतना ही कह पाई। रात धीरे धीरे गहराती चली गई। कमरे की लाइट मंद थी, पर्दों से छनकर आती चांदनी दोनों पर ठहर गई। वे एक दूसरे के पास बैठे रहे, बातें कम, एहसास ज्यादा।
प्लीज मेरी सीरीज पर कमेंट करें, साथ में रेटिंग भी दें। आपको मेरी सीरीज कैसी लग रही है कमेंट में बताएं। मुझे फॉलो करना और व्यू देना याद रखें। आपके कमेंट हमें लिखने का हौसला देते हैं।